मनु, रात का वक्त था और इस वक्त दोनों अंधेरी छत पर खड़े शून्य में ताक रहे थे। इनाया का चेहरा सपाट था और सूनी निगाहों से जाने उस अंधेरी रात में क्या खोज रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? मानव ने तुरंत पलटकर देखा। चांद की हल्की रोशनी इनाया के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर उसकी कश्मकश तो समझ गया लेकिन बात नहीं समझ सका। इनाया, क्या हुआ है? क्या बताना है तुझे मुझे? इनाया ने गहरी सांस छोड़ी। मनु, मैंने फैसला किया है कि यहाँ से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? मानव चौंका और भौहें उठाए गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। वही जो तू समझ रहा है, हमारा साथ बस यहीं तक का था। तेरे रहने का इंतजाम हो गया है तो काकी के साथ आराम से यहाँ रहियो। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है तू? मानव गुस्से से भड़का। उसकी भौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गई थीं और अब वो इनाया को घूर रहा था जबकि उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। नहीं मनु, ये कोई बकवास नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और यही सही है। तुम्हारा मेरे साथ होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो। मुझे झुकाने के लिए तुम्हें टारगेट किया जाए, मेरी लाइफ की उलझनों में तुम्हारी जिंदगी उलझे, दोबारा तुम्हारी जान खतरे में पड़े, मेरा तुमसे दूर जाना ही तुम्हारे लिए सही है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम गई तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी जाऊँगा। जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मनु, इनाया परेशान सी बोल ही रही थी कि मानव उसकी बात काटते हुए बोला, ऐना तुम जाओगी कहाँ? क्या करोगी? क्यों बेकार में ऐसी जिद कर रही हो जो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा? मेरी मानो तो जीजू से बात करो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कायरफ का जिक्र आते ही इनाया के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे। जवाब देने की जगह उसने अपना चेहरा फेर लिया। मानव, जिसकी निगाहें उसी पर टिकी थी, उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम उनसे नाराज होकर उनसे दूर जा रही हो? नहीं, दूर कहाँ जाऊंगी? इनाया ने ठंडी आह भरी और बेबसी भरी मुस्कान उसके होंठों पर ठहर गई। वो तो मेरे वजूद से इस कदर जुड़ा है कि चाहकर भी मैं कभी उससे दूर नहीं जा सकती। मैं बस अभी उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसने कहा था कि ये डील उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपनी इतनी इम्पोर्टेंट डील छोड़कर वापस आए, अपने सपनों की सैक्रिफाइस करे। मैं इंतजार करूंगी उसका और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा विश्वास है, वो मुझे ढूंढ लेगा। जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता, बस मुझे तब तक के लिए खुद को उसके डैड के भेजे कुंडों से बचा कर रखना है। लेकिन डिस्टर्ब तो वो हो गए होंगे, उन्हें अब तक तुम्हारे गायब होने की बात पता चल गई होगी। वो परेशान होंगे, हो सकता है तुम्हें ढूंढ भी रहे हों। मेरे ख्याल से तो तुझे एक बार उन्हें कॉल करके सच सच सब बता देना चाहिए। उन्हें नहीं तो उनके फ्रेंड को ही बता दे, वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। जीजू को पता चलेगा कि तुम सेफ हो तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा, तब वो और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और अगर उन दोनों के फ़ोन ट्रेस हो रहे होंगे तो? मैं गायब हूँ तो उनके डैड को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि मैं हेल्प के लिए कायरव या उसके फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर उनके यहाँ तक पहुँचने से पहले वो हम तक पहुँच गए तो? अगर मेरी वजह से उनके फ्रेंड की जान भी खतरे में पड़ गई तो? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इस वक्त मेरा उन दोनों में से किसी को कॉन्टैक्ट करना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी उनके फ्रेंड का नंबर मुझे याद नहीं है और कायरव को मैं कॉल कर नहीं सकती। अभी उसे बस मेरी चिंता होगी। अगर मैंने उससे बात कर ली, सारी सच्चाई उसे बता दी, तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। कितना बुरा लगेगा उसे, और उस तकलीफ में वो बिल्कुल अकेला होगा। अगर वो अचानक लौटा और मेरे पास आने की कोशिश की तो उसके डैड को शक हो जाएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। अभी हमारे लिए यही सही है कि हम सबकी नजरों से छुपकर यहाँ रहें। मामला शांत होने के बाद कुछ सोचेंगे। हम रामलाल भाईसा की हेल्प ले सकते हैं, उन्होंने जीजू के साथ काम किया हुआ है। अगर उनके फोन से फोन करते हैं तो किसी को शक नहीं होगा। शक होगा बल्कि और ज्यादा होगा, क्योंकि ये सब काम उनका असिस्टेंट मतलब उनके फ्रेंड संभालते हैं। ऐसे किसी को भी डायरेक्टली उन्हें कॉल करने की परमिशन नहीं है, इसलिए इस वक्त मैं चाहकर भी कायरव को कांटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन तू तो एक बार नित्या से बात कर ले, वो परेशान हो रही होगी। नित्या का जिक्र होते ही मानव के चेहरे के भाव बदल गए। मैंने उसके दादाजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें समझा दिया है कि नित्या का ख्याल रखें। डायरेक्ट नित्या को कॉन्टैक्ट में अभी चाहकर भी नहीं कर सकता। जब तुम्हें मजबूर करने के लिए वो मुझ तक पहुंच गए, मुझे रास्ते से उठा लिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि उनकी मुझ पर काफी वक्त से नजर थी। उनके आदमी मेरा पीछा कर रहे थे, फिर तो यकीनन वो नित्या और उससे मेरे रिश्ते के बारे में भी जानते होंगे। अब जब हम उनकी कैद से भाग गए हैं तो हो सकता है कि उनकी नजर नित्या पर हो और हम तक पहुंचने के लिए वो नित्या को मोहरा बनाने की कोशिश करे। इन हालातों में मेरा बार बार दादाजी को कॉल करना, सीधे नित्या से कॉन्टैक्ट करना दोनों ही सही नहीं होगा। अगर उन गुंडों को शक भी हो गया तो हमारे साथ साथ नित्या की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उस वक्त वो मुझसे जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जैसे तुम्हारे नित्या से कांटेक्ट करने पर उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी,
वैसे ही मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जब तक कायरव वापस नहीं आ जाता, हमारा वापस जाना सेफ नहीं है। इसलिए तुम आंटी के साथ यहीं रहो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ, जिससे तुम और आंटी सेफ रहो। दोनों सिचुएशंस में जमीन और आसमान का अंतर है। नित्या वहाँ अपने घर पर सुरक्षित है, असली खतरा इस वक्त तुम्हें है। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तब भी मेरे और आई की जान खतरे में ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों तुमसे जुड़े हैं और एक साथ वहाँ से भागे हैं। तुम हमसे दूर चली भी गई तब भी अगर वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपनी ये बेकार की जिद छोड़ दो, क्योंकि तुम कितना ही बोल लो लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है। जीजू तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंप कर गए हैं, उनकी एब्सेंस में तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उससे भी पहले तुम मेरी फ्रेंड हो, और इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हें तन्हा अकेला उन गुंडों से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। खतरा है लेकिन मैं ऐसे अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर हम यहाँ रहेंगे तो साथ ही रहेंगे, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। अगर हमारे नसीब में जिंदगी लिखी होगी तो साथ जिएंगे, अगर मरना होगा तो साथ मरेंगे। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन इस मुसीबत से हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसलिए अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो, हम सब यहाँ सेफ हैं, तो जीजू के आने तक आराम से यहाँ रहते हैं। अगर वो गुंडे हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तो हम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे, जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। तुम समझ नहीं रहे मनु, तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। इनाया परेशान सी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानव कुछ भी समझने के मूड में लग नहीं रहा था। उसने तल्ख लहजे में कहा,
समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। जीजू के डैड ने इतनी बड़ी प्लानिंग की है सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें उनसे दूर कर सके। हो सकता है अभी भी उनके आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हों। अगर तुम उनके हाथ लग गई तो तुम्हें अकेला देखकर वो तुम्हारे साथ गलत करने, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अकेले तुम उन हैवानों का सामना कब तक और कैसे करोगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीजू को क्या जवाब दूंगा? खुद को कैसे माफ करूंगा? अगर हम साथ रहेंगे तो शायद इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकल जाए, ये मुश्किल वक्त गुजर जाए और सब वापस पहले जैसा हो जाए। एकता में बल होता है आईना। हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर बिखर गए तो कमजोरी बनकर दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। मानव काफी सीरियस लग रहा था, और जिस तरह वो इनाया को समझा रहा था, वो चाहकर भी आगे कुछ बोल नहीं सकी। मानव की कही हर बात सही थी, वो लॉजिकली सोच रहा था। इस दिन के बाद इनाया ने दोबारा जाने की बात नहीं की। ये घर रामलाल ने उन्हें दिया था और पिछले तीन दिनों से वो यहीं रह रहे थे। उन्होंने उनके रहने, खाने पीने सबका इंतजाम कर दिया था, और अब मानव उनके कारखाने में काम करने भी जाने लगा था। वो सबकी नजरों से छुपकर यहाँ रह रहे थे। टू बी कंटिन्यूड।